नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हाल ही में हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेब्रस चिप भेंट की। ये उन्नत चिप्स भारत की आगामी 8 एक्स फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को शक्ति प्रदान करेंगी, जिससे भारत के एआई मिशन को बढ़ावा मिलेगा और देश की अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि सदस्य देशों ने एक न्यायसंगत, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान भी किया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य और सहयोगी देश की स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की बहुत सराहना और समर्थन किया।
ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में हुई वार्ता को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप की 3 दिन की चीन यात्रा आज समाप्त हो गई। दोनों नेताओं ने कई दौर की वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार, ईरान विवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिर आर्थिक संबंध बनाए रखने, सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने भी यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि वे शी जिनफिंग की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि ताइवान, दुर्लभ धातुओं के निर्यात या सेमीकंडक्टर व्यापार पर कोई सहमति नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्षी ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जल डब्लू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 24 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में घरों, एक स्कूल और अन्य नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने मुख्य रूप से कीव को निशाना बनाकर 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया है। भारत पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक, वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।